गुड़गांव से ब्रह्मा कुमारी सुदर्शन बहन जी कहती हैं कि पहली बार मम्मा बाबा को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जन्म जन्मांतर के बिछड़े माँ बाप मिल गए। लगा कि मम्मा ही जगदम्बा दुर्गा काली है। नैनों को ऐसी रोशनी मिली जो मेरी कालीमा ही धुल गई। माँ का प्यार इतना था जिसका वर्णन मेरे लिए मुश्किल है। मम्मा की आवाज इतनी सुरीली थी कि चलता हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाता था। एक बार लौकिक परिवार को माँ से मिलाने के लिए लेकर गई। हमारे भाई ने महसूस किया कि यह तो जैसे कि भगवान है। बटाला के ब्रह्मा कुमार नंद किशोर भाई कहते हैं कि जब मम्मा को मैंने पहली बार देखा तो कुछ क्षण वैष्णो देवी का अनुभव हुआ, फिर अचानक शीतला देवी का अनुभव हुआ। उनके सामने कोई कितना भी कड़ा विरोधी आ जाए, एक क्षण में ही उसके व्यर्थ संकल्प जैसे बंद ही हो जाते थे। वे उनके सामने बच्चे बन माँ माँ कहने लग पड़ते थे। ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवारत ब्रह्मा कुमार रमेश कोहली जी सुनाते हैं कि
उन्हें जब ये मालूम भी हो गया कि अब उनका यह शरीर अधिक समय तक रहने वाला नहीं है, तब भी वे निर्भय और निश्चिंत बनी रही। मनुष्य को सबसे अधिक मृत्यु का भय होता है। उनकी दिनचर्या में कुछ अंतर नहीं आया। किसी को पता तो क्या, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज ही मम्मा अपना शरीर त्याग करेंगे।
मम्मा मुस्कुराते हुए सबको अंगूर दे रही थी, साथ में इतनी शक्तिशाली दृष्टि भी दे रही थी कि मानो देवी माँ सबको वरदान दे रही हो। उनकी आंखों से रोशनी निकलकर मेरे ऊपर पड़ रही थी, बहुत शक्ति में रही थी, जैसे कि कोई देवी शक्ति की वर्षा कर रही हो।
माँ उस समय ऐसी स्थिति में थी कि बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि कैंसर के रोग का पूर्ण रूप से तीव्र आक्रमण था। मगर माँ सरस्वती ने प्रकृति जी का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी संपूर्णता का साक्षात्कार कराया। मैंने आज तक बहुत कैंसर के मरीजों को देखा है। वे अंत समय असहनीय दर्दों से ओतप्रोत होते हैं, मगर माँ सरस्वती जी ने ईश्वरीय ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर इस असाध्य रोग को भी परास्त कर दिया था। दिल्ली के कवि भाई ने कहा, इस यज्ञ में शिव ने ब्रह्मा पद था बनाया, लेकिन हे मम्मा सरस्वती, तूने खुद को खुद ही बनाया। बाबा को पता था कि आज मम्मा शरीर छोड़ने वाली है, इस कारण बाबा ने उस दिन सुबह ही मम्मा के हाथों से सब यज्ञ वत्सों को अंगूर दिलवाए थे। बाबा ने मुझसे कहा, बच्ची जाओ मम्मा को देख कर आओ। मैं मम्मा के कमरे में गई। मम्मा की गर्दन बाजू में झुकी हुई थी। मैं तुरंत बाबा के पास दौड़ कर आई और बाबा बाबा कहने लगी, तो बाबा ने कहा, अच्छा मम्मा शिव बाबा के पास चली गई। बाबा अपने कमरे में जाकर पत्र लिखने लगे। दो बहनें बाबा के पास रोने लगी। बाबा ने कहा, क्या तुम बाबा के सामने मम्मा का दुख जताने आई हो? रोते कौन है विधवा? मम्मा तो तुम्हारी थी ही नहीं, वह शिव बाबा की थी और शिव बाबा के पास चली गई।
बाप बाबा ने 23 जून को माँ से कहा, आपको सभी बच्चों को आम देना है। माँ ने सहर्ष आज्ञा पालन करते हुए हर बच्चे को स्नेहपूर्ण शक्ति संपन्न दृष्टि देते बगैर जल्दबाजी किए आम की टोली और वरदान दिए।
मुंबई से ब्रह्मा कुमार रमेश जी कहते हैं कि अप्रैल 1964 में डॉक्टर ने कहा कि मम्मा की छाती पर यह गांठ कुछ विचित्र लगती है, इसलिए मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में जांच करानी चाहिए। टाटा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि हर 3 महीने में चेकअप कराने के लिए मम्मा को मुंबई लाना पड़ेगा। मम्मा आती रही। अप्रैल 18 को नीला बहन ने कहा कि डॉक्टर ने बताया है कि मरीज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने तक जी सकेगा। मैं शील दादी के पास गया और कहा कि वतन में जाकर अव्यक्त बाबा को अपने तन में आने का अनुरोध करो। शील दादी ने कहा, आपको जो भी संदेश देना है मुझे दो, मैं सुबह उनके पास ले जाऊंगी। बाबा इतना साधारण है क्या कि जब बुलाओ वो आ जाए? मैंने कहा, बहुत गुप्त और महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको संदेश में भी नहीं सुना सकता, इसलिए आप बाबा के पास जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा जरूर आएगा। वे ध्यान में गई और 5 मिनट के बाद बाबा उनके तन में आए। बाबा ने कहा, बच्चा यह ड्रामा की भावी है, टल नहीं सकती। तुम एक कागज पर मम्मा के लिए लिखो कि डॉक्टर ने आपके जीवन की अवधि केवल 3 महीने ही बताई है। आप सोचिए, दुनिया में कौन अपनी माँ को लिखेगा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ 3 महीने शेष है। अभी तो मैं बहुत शांति से आपको बता रहा हूँ, लेकिन बाबा के सामने कह रहा था, बाबा मेरे से यह काम नहीं होगा, और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। बाबा कहने लगे, यह कार्य तुमको ही करना होगा, बाबा तुम्हें शक्ति देंगे। पत्र लिखो और मम्मा के हाथ में ही दो। मम्मा के पढ़ने के बाद उस पत्र को एक लिफाफे में डालकर मधुबन भेजना। ऊपर लिखना, साकार बाबा को ही मिले। 5-6 बार कोशिश की परंतु लिखने की हिम्मत ही नहीं आई। आखिर किसी प्रकार लिखा और मम्मा को दी। मम्मा ने कहा, यह किसकी चिट्ठी है? मैंने कहा, अव्यक्त बाप ने मुझसे लिखवाई है। मम्मा ने पढ़ा और कहा, ड्रामा की भाभी। देखिए मम्मा का ड्रामा पर कितना निश्चय था कि सब कुछ जानते हुए भी कितनी निश्चिंत और अडोल थी। मैंने चिट्ठी को आबू भेज दिया। अंतिम बार डॉक्टर ने कहा, अब कैंसर बहुत बढ़ गया है, दुनिया की कोई भी दवाई अब काम नहीं करेगी। मम्मा को श्वास लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। बाबा ने कहा, मम्मा को आबू भेज दो। शील दादी को हमने कहा कि बाबा के पास संदेश ले जाना कि बाबा हमने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज एक चीज मांग रहा हूँ कि जब मम्मा शरीर छोड़े उस समय मैं वहाँ हाजिर रहूँ। शील दादी एकदम बोल पड़ी, क्या आप इतने नास्तिक बन गए? मम्मा कभी शरीर छोड़े, ऐसा कभी हो सकता है? मैंने कहा, अगर मम्मा शरीर छोड़ने वाली नहीं होंगी तो बाबा बता देंगे कि कैसे बाबा उनको आबू में नई नई दवाई देंगे और मम्मा ठीक हो जाएंगी। शील दादी संदेश लेकर गई। बाबा ने कहा, ड्रामा को मंजूर है तो रमेश वहाँ पहुँच जाएगा।
जब मम्मा मधुबन के लिए विदाई लेने वाली थी, उस दिन मैं एक रिकॉर्ड घर लेकर आया था, बिठाए जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दादी कुमारका को मैंने कहा कि यह 3 मिनट का रिकॉर्ड है, पूरा होने के बाद आप इसको फिर से चलाना, मैं 6 मिनट मम्मा के साथ व्यतीत करूंगा। जब दादी जी ने यह गीत सुना तो उसको बंद कर दिया, कहने लगी, ऐसा गीत नहीं बजाना चाहिए। मैंने कहा, दादी हम अपने घर से मम्मा को विदाई दे रहे हैं, यह हमारा निमंत्रण है। दादी जी को पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने रिकॉर्ड चलाया। मम्मा 6 मिनट तक मुझे प्यार भरी दृष्टि देती रही। आगे क्या होगा यह मम्मा को भी मालूम था और मुझे भी। अन्य यज्ञवत्स यह सोच भी नहीं सकते थे कि मम्मा हमारा साथ छोड़ जाएंगी। अंतिम संस्कार के समय सबको चंदन के टुकड़े लिए ऑलमाइटी शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया था कि माँ के लिए बहुत सजा हुआ चौदोल बनाना है। बाप दादा और हम बच्चे आधा घंटा योग में बैठे और अंत तक यही आह्वान किया कि अब भी बाबा हमारी माँ को वापस भेज दे। ऐसा सन्नाटा छा गया था जो सुई भी गिरे तो भी आवाज आए। बाबा भी मधुबन के फाटक तक कंधा देने आए।
रतन ने संदेशी ने मम्मा से पूछा कि कहां कहां बाबा ने सैर कराई। माँ बोली, बाबा ने कहा आधे भक्त तुम्हारे और आधे भक्त मेरे हैं। बाबा एक काली का मंदिर ले गए। एक भक्त प्रतिज्ञा कर रहा था कि अगर दर्शन नहीं होंगे तो प्राण त्याग दूंगा। बाबा बोले, मम्मा इनके सामने जाओ। मैं जाकर मूर्ति के आगे खड़ी हो गई। भक्त इस साधारण रोग को देख बेचारा हर्षित भी हो रहा था तो दुविधा में भी पड़ गया। बाबा ने कहा, इसके मस्तक पर हाथ धरो। मस्तक पर हाथ रखा तो वह ध्यान में चला गया और देखा कि कैसे वही काली अम्बा के रूप में आई खड़ी है। भक्त तो गदगद हो गया। फिर बाबा ने विदेशी युगल दिखाया जो बहुत घायल रूप में अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहे थे और माँ माँ कह बहुत मिलने की अभिलाषा प्रकट कर रहे थे। बाबा ने सुनाया कि भले ही अब ये क्रिश्चियन है लेकिन है भारतवासी पक्के भक्त, कोई हिसाब के कारण वहाँ जन्म मिला है।
मम्मा ने बताया कि पहले बाबा कहता था कि अभी तुमको बहुत सेवा करनी है, अभी जाने की बात ही नहीं, सोचो तुम्हारा तो बहुत बड़ा पाठ है आदि। लेकिन इस बार जब हमने पूछा कि बाबा कब तक यह हिसाब किताब है तो बाबा बोले अब जल्दी ही अंत होने वाला है और गंभीरता से मुस्कुरा रहा था। लगता था कि कोई गुहे रहस्य छिपा हुआ है। बीच बीच में यही कहता था कि बेटी सूक्ष्मतम में चलेगी, वहाँ चलकर खेलेगी बहलेगी। इन सब चरित्रों से और शरीर की कमजोरी बढ़ती देख पक्का महसूस हो रहा था कि अब मुझे जाना है। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे समझते हैं कि माँ हमें भूल गई है लेकिन माँ तो अब भी बच्चों की सेवा में है। साकार में तो जहाँ रहती थी वहाँ ही सेवा कर सकती थी लेकिन अब तो जहाँ चाहे एक सेकंड में पहुँच सकती है। मम्मा बोली, ऐसे नहीं कि मुझे सब कुछ भूल गया है, अमृत वेले हर रूह को इमर्ज करती रहती हूँ लेकिन जैसे मैं सूक्ष्म रूप में हूँ वैसे तुम भी आत्मा रूप में रहेंगे तो महसूस करेंगे कि माँ कैसे सेवा कर रही है। मैं सारा दिन दिव्य गुरुओं रूपी गहनों से आप बच्चों को सजाती रहती हूँ, यही माँ की सेवा है। थोड़े समय में इन बच्चे अंतर्वाहक शरीर द्वारा माँ की सेवा का प्रभाव देखते जाएंगे। बीच में दो बार बाबा ने मुझे शरीर में चक्कर लगाकर आने के लिए भेजा था कि अनुभव करो कि शरीर के बंधन वश आत्मा का क्या हाल होता है और शरीर के बंधन से मुक्त आत्मा उसी शरीर में जाती है तो कैसा अनुभव करती है। भले ही दो बार आई लेकिन ऐसा लगा जैसे कि कोई पराई जगह चक्कर लगाने आई हूँ। शरीर बहुत ठंडा हो चुका था इसलिए भले ही आत्मा प्रवेश हुई लेकिन चुरपुर नहीं हुई। हमने कहा, मम्मा हम सबको 4 से 5 बजे तक 2-3 बार चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक से महसूस हुई कि माँ आई है और सबसे मिल रही है।
फिर बाबा बोले, मम्मा को विष्णुपुरी शंकरपुरी निर्वाण धाम आदि की बहुत सैर करानी है।
माँ बोली कि बाबा हमें वहाँ ले चलो जहाँ विनाश की तैयारियाँ हो रही है। वहाँ बहुत सारे हथियार तैयार थे, मार्शल लोग प्लान बनाए तैयार खड़े थे, सिर्फ 1 सेकंड की देरी है ऑर्डर मिलने व विनाश शुरू करने की। तो बाबा ने कहा, एक तरफ विनाश की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ शक्ति सेना की स्थापना की तैयारी है। स्थापना और विनाश की तैयारियों में दिन रात का फर्क था। सबको अमृत पिलाकर बाप दादा अव्यक्त मम्मा के पास भेजते गए और मम्मा हर एक को मीठी दृष्टि देते हुए भोग देती रही। बाप दादा बोले, मम्मा अब कहाँ निवास स्थान है। माँ बोली, सूक्ष्म वतन में। बाबा बोले, सेवा पर तत्पर हो। माँ बोली, शिव बाबा के साथ विनाश की तैयारियों का साक्षात्कार कराते हैं, अनन्य भक्तों के पास जाते रहते हैं और आप वत्सों की भी रूहानी सेवा करते रहते हैं। प्रभाव निकालने के निमित्त जो व्यक्ति हैं उनका भी इन एडवांस साक्षात्कार करते रहते हैं। अंत प्रेरणा से अंतर्वाहक शरीर द्वारा उनकी बुद्धियों को रेरने की सेवा चलती रहती है। सदगुरुवार रात 5:30 बजे बाप दादा ने अक्षर सती और देवी इन 3 संदेशियों द्वारा शिव बाबा को मम्मा की अधरामणी का निमंत्रण भेजा। बाबा ने यह भी संदेश भेजा कि पूछ कर आना कि इन 3 संदेशियों में से माँ की अधरामणी किस तन में होगी। शिव बाबा बोले, साकार बाबा आप स्वयं ही जान लेंगे कि माँ किसके तन में आई हुई है। बाबा तीनों को दृष्टि देने लगे। पल में ही तीनों रतन में पहुँच गयी। देवी बहन और सती बहन के रथ में संपूर्ण मम्मा तथा ऑलमाइटी शिव बाबा की पधरामणी हुई। अचल बहन के तन में साकारी मीठी मम्मा की पधरामणी हुई।
मम्मा ने कहा, तुम जब ब्रह्मा भोजन बनाते हो सब्जी काटते हो उस समय एक ही शिव बाबा की याद में रहने से ब्रह्मा भोजन में ताकत रहती है।
ब्रह्मा भोजन का बड़ा महत्व है, बड़े प्यार से बनाना। रोटी भी बेलो चंद्रमा सी गोल जिससे वो उस गोल ज्योति की भी यादें दिलाती रहे और खाने वाले भी शक्तिशाली बन जाए। अब आप बच्चों को यज्ञ का कार्यभार संभालने में पिताश्री का पूरा हाथ बटाना। पिताश्री वृद्ध उन पर मम्मा के जाने से अधिक बोझ न पड़े।
यह बाबा की दुकान है जहाँ बहुत सच्चाई व ईमानदारी से सेवा करनी है।
जिसका सदा थक शिव बाबा से बुद्धि योग है वो कभी थक नहीं सकता। कितना भी मम्मा के बारे में बताते जाओ उनके चरित्र और व्यक्तित्व का गुणगान कभी पूरा नहीं होगा।
मम्मा लंबी मां।